प्रत्यक्ष और अनुमान करके बिना नहीं, जैसा करके बने नहीं। थोड़ा कलम देना, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान करके बने नहीं।
हाँ, जी तुम वस्तु लै रहे हैं ना, वो वर्गी है। यह जो ज्ञान हो गया, यह हम दृष्टान दे रहे काहे ते प्रत्यक्ष आदि तीन ही प्रमाण अंगीकार करें। जहां पुरुष ने गवे नहीं देखा होवे, वो किसी ने नील गाय नहीं देखी,
ठीक है ना, किसी ने नील गाय नहीं देखी, तो जो बनवासी पुरुष है जंगल में रहा रहा हो, वो आके उनको पूछे भी नील गाय कैसे होंगी है, तो उन्हें कहना तेरे गाय वर्गी होंगी बई। ये तो उसने सुन लिया, तो फिर कि उन्हें उपमा दे दी ना, कि गाय दी नील गाय की गाय नाल उपमा कर दी, तेरी जी नील गाय है तेरे गाय के बराबर होएगी, तेरे गाय वर्गी है। तो जो फिर वह कित पुरुष जंगल में गया, तो उन्हें जो नील गाय देखी, तो उन्होंने वह जी गल सी याद आ गई, हाँ ये मेरे गाय वर्गी यही नील गाय है। क्या ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, फिर यह भी ज्ञान हो जाता। तो फिर यह कि शब्द कि प्रमाण और अंगीकार कर रहा, उपमान चंद्रवत मुखम, ये भी उपमा दे दी है ना, कोई मुख चंद्र ते थोड़ी आके बैठ गया, जा चंद्र मुख ते आके बैठ गया, सोना पुरुष होवे जा उन्हूं की कहेंगे किधर चंद्र वर्गा मुखड़ा है। तो इहदा अर्थ की होया, उपमान प्रमाण दिता, उपमा कर दिती उहदी, देखा ना, देखिया और बनवासी पुरुष से ऐसा श्रवण किया है, गौ के सादृश गवे होवे है, तेरी गाय वर्गा ही नील गाय है। सो पुरुष जब वन में चला जावे है और गवे को देख लेवे, तब वाकू बनवासी पुरुष ने कहया जो गौ के सदृश गवा है, जह वाक्य ताके अर्थ का सिमरण होवे है, ता स्मृति से अनंतर पुरुष को ऐसा ज्ञान होवे है, जह पशु गवे है। ऐसा ज्ञान नहीं हुआ चाहिए ना, अनुमान उपमान नहीं मानोगे तो फिर ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा जानते ऐसा विलक्षण ज्ञान का हेतु उपमान प्रमाण भी अंगीकार करना करने योग है। काहे ते, अब दूसरा सुन लो, हो गया ना, करे हैं। और पूर्व मानसा एक देशी जो भट्ट हेतु उपमान प्रमाण भी अंगीकार करना करने योग है। काहे ते, अब दूसरा सुन लो, हो गया ना, करे हैं। और पूर्व मानसा एक देशी जो भट्ट का शिष्य प्रभाकर है, सो पंचम अर्थापत्ति प्रमाण भी अंगीकार करे हैं। अर्थापत्ति प्रमाण अर्थ से जान लेना, अर्थ से पंचवा कहता वो कैसे भी अर्थ से भी जान लेना, वो भी मनना चाहिए। आंदा वो केड़ा प्रमाण होया, आंदा देखो कोई बंदा कह रहा मैं प्रसादा नहीं छकता भाई, ठीक है, अब मोटा ताजा बनया होया है, तो तुम की अर्थ लगाओगे, तुम ये अर्थ लगाओगे भी दिने तो नहीं छकता फिर रात में छकता होगा, मोटापना जोड़ा है वो तो फिर कहता कम भोजन का ही कम है। तो जो कह रहा मैं प्रसादा नहीं छकता, तो फिर अर्थ की होएगा कि प्रसादा नहीं छकता तो फिर कमजोर होना चाहिए, है जी, बस अर्थ लगा रहा ना, कहता वो कैसे भी अर्थ से भी जान लेना, वो भी मनना चाहिए। आंदा वो केड़ा प्रमाण होया, आंदा देखो कोई बंदा कह रहा मैं प्रसादा नहीं छकता भाई, ठीक है, अब मोटा ताजा बनया होया है, तो तुम की अर्थ लगाओगे, तुम ये अर्थ लगाओगे भी दिने तो नहीं छकता फिर रात में छकता होगा, भाई मोटापना जोड़ा है वो तो फिर कहता कम भोजन का ही कम है। तो जो कह रहा मैं प्रसादा नहीं छकता, तो फिर अर्थ की होएगा कि प्रसादा नहीं छकता तो फिर कमजोर होना चाहिए, है जी, बस अर्थ लगा लिया ना, अर्थ लगा लिया, उन्होंने कहते अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थ से बस अर्थ से सिद्ध हो गया। देखो सो पंचम प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण भी अंगीकार कर रहे हैं। दिन में भोजन त्यागी पुरुष को स्थूल देख के, दिन में भोजन त्यागी, दिन च तो प्रसादा नहीं छकता, स्थूल देख के मोटा देख के ऐसा ज्ञान होवे है जह पुरुष रात्रि को भोजन करे है। ठीक है, जानते रात्रि भोजन बिना दिन में भोजन त्यागी के विशेष स्थूलता बने नहीं। ये रात्रि भोजन नहीं करेगा तो मोटापन कैसे बनाया रहेगा, तो कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, जाते रात्रि भोजन का स्थूलता संपाद्य है और रात्रि भोजन संपादक है। संपादक जो रात्रि भोजन ताके ज्ञान का हेतु स्थूलता का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण करके हुए है। ठीक है, अर्थापत्ति प्रमाण कही है। और पूर्वी मांसा जो बाट है सो षठ अनुपलब्धि प्रमाण भी अंगीकार करे हैं। एक अनुपलब्धि प्रमाण है ना होना, ये भी तो ज्ञान है भाई। तुसी हुण कोई तुहानू कोई चीज लैण भेजे माता ताडी जां ताडा पिता कमरे दे विच जा भी पुतो चीज फड़ के लिया उठा के लिया तुहानू उत्थे मिले ना तो की कहोगे, नहीं है तो नहीं होण दा भी ज्ञान हो गया कि नहीं। ना दा भी तो ज्ञान हो गया भी नहीं है। वो कहिंदा ये भी प्रमाण है एक अनुपलब्धि प्रमाण कि उसकी वस्तु की उपलब्धि नहीं हो रही है ही नहीं, ये भी तो ज्ञान है। ये ज्ञान कैसे होया? अनुपलब्धि प्रमाण से ज्ञान होया। ठीक है ना, हाँ जी, अनुपलब्धि प्रमाण भी अंगीकार करें। जो तुसी इन इन निश्चल दास जी का एक ग्रंथ और है बिरति प्रभाकर, वो तो इतना कठिन ग्रंथ है ना, उदे विच अनुपलब्धि प्रमाण ते इतना जोर लगाया है इन्होंने सिद्ध करने वास्ते बहुत ज्यादा। उदे उनू पढ़ना होवे तो पहला न्याय पढ़िया होवे तां उहदे विच प्रवेश होगा, नहीं तो नहीं हो सकदा। बिरति प्रभाकर उहदा नाम है। तो यही नहीं है जो हुण डिया सीधा सीधा ते वो कित्थों आ जाऊगा है ना। और वेदांत शास्त्र विषय भी षठ प्रमाण अंगीकार करे हैं, और वेदांत शास्त्र वाले भी छे प्रमाण मानते हैं। भट का ये पूर्वी मानसा का भट ये भी छे प्रमाण मानते हैं। अनुपलब्धि प्रमाण का प्रयोजन जय है गृह गृह आदि के में घट आदि कन के अभाव का ज्ञान होवे है, तहां जहां पदार्थ की प्रतीति नहीं होवे है ताकि अभाव का ज्ञान होवे है। अप्रतीति को अनुपलब्धि कहे हैं, घट की जो अनुपलब्धि कही है अप्रतीति ताके घट का अभाव निश्चय होवे है। ऐसे पदार्थ के अभाव निश्चय का हेतु जो पदार्थन की अप्रतीति ताकु अनुपलब्धि प्रमाण कहे हैं। ठीक है, प्रमाण और परमा ज्ञान का लक्षण, अब ये तो हो गया प्रमाण, प्रमाता प्रमाण परमेय, अब परमेय किनू कहेंगे, परमा जां परमा कह लो। परमा मैंने इन्हां दे करके जो ज्ञान उत्पन्न होगा उन्हूं कहेंगे परमा। ठीक है ना, इत्थे सब ज्ञान तो बगैर गल नहीं चलेगी। ये इतने इतने कठिन प्रसंग क्यों रखे दे विच, बुद्धि नूं तीक्षण तिखी करन वास्ते, कि क्यों तिखी करनी आपां भई, बुद्धि तिखी मैंने बरीक, बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी जितनी बरीक होगी वो बरीक तो बरीक वस्तु नूं पकड़ लेगी। ते बरीक तो बरीक किनू पकड़ना आपां, आत्मा नूं। इसलिए बुद्धि नूं पहला तीक्षण कर रहे हो, उहदे लायक बना रहे है, वो बरीक चीज नूं पकड़न वाली बुद्धि बन जावे। इसलिए ऐसे ऐसे प्रसंग ग्रंथकारों ने रखे विच, नाले उपयोगी भी है ना, ऐसे नहीं है बेकार ही रख देते। प्रमाण का जो कारण सो परमा ज्ञान का जो कारण सो प्रमाण कहिए, प्रमाण का लक्षण लिख लो। प्रमाण का क्या लक्षण है, परमा ज्ञान का जो कारण है सो प्रमाण कही है। स्मृति से भिन्न जो अबाधित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान है सो परमा कही है। स्मृति से भिन्न, स्मृति नहीं होगी, स्मृति मैंने जाद, स्मृति ज्ञान जो है सो परमा नहीं है। काहे ते जो परमा ज्ञान है सो परमाता के आश्रित होवे है, सो और स्मृति परमाता में परमाता के आश्रित नहीं किंतु साक्षी के आश्रित है। देख लो जड़िया जाद सानू जाद आउंदी है ना, कोई जाद पुरानी गल जाद आउंदी है ते केदे आसरे है वो स्मृति, साक्षी के आसरे। आत्मा नहीं होवे ते जाद नहीं आ सकदी है? बुद्धि दे आसरे नहीं है, वो बुद्धि च ते स्टोर पिया है, भी कैसेट पई है, कैसेट सारा कुछ भरिया पिया है, वो टेप रिकॉर्ड विच नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगी, लाइट ना हो तो सब कुछ हो, यही आत्मा ना हो सिमरति नहीं हो सकती, जो सिमरति हो रही है ओदे बल पर हो रही भाई, आत्मा के बल पर। देखो स्पष्ट कह रहे हैं कि देखो सिमरति परमाता के आश्रित नहीं है, किंतु साक्षी के आश्रित अंगीकार करी है, और भ्रांति ज्ञान और संशय भी साक्षी के आश्रित अंगीकार किए हैं। भ्रांति ज्ञान हो रहा रज्जू में सर्प, स्थान में पुरुष, नगर में दर्पण में नगर, ये सारे जिहड़ियां भ्रांतियां किहदे आसरे है, ये भी साक्षी के आसरे है, क्योंकि अज्ञान किहदे आसरे है, फिर ते फिर है ना। इस कारण ते सिमरती और भ्रांति और संशय ज्ञान जे तीनों आभास सहित अविद्या की वृत्ति रूप है, अंतःकरण की वृत्ति रूप नहीं, ये अविद्या की वृत्ति है। अंतःकरण की वृत्ति की होगी, यथार्थ करेगी वो तो भ्रांति नु नष्ट करेगी। अंतःकरण की वृत्ति जो आप अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं ऐसी वृत्ति बनावांगे तो वो की करेगी, वो तो ज्ञान अज्ञान का नाश करेगी, ठीक है ना। फिर मैं दिखाई नहीं दिता इधर हो, चलो जानते परमाता के आश्रित ही किंतु साक्षी के आश्रित है। जो अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान होवे सो परमाता के आश्रित होवे है, और सोई परमा कहिए है। सिमृति ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति नहीं, जानते परमाता के आश्रित नहीं और परमा भी नहीं, जानते परमा के लक्षण विषय सिमृति से भिन्न कहया चाहिए। कह रहे परमा पहला की क्या सी, परमा ज्ञान का जो कारण है सो प्रमाण कहिए है, अंदा ये नहीं गल बनता। दूसरा लक्षण करो केड़ा, आबादित अर्थ को विषय करने वाला ज्ञान और स्मृति भी है, परंतु स्मृति ज्ञान स्मृति से भिन्न नहीं। जानते आबादित अर्थ को विषय करने वाला जो स्मृति से भिन्न ज्ञान है सो परमा कहिए है। अबाधित अर्थ को विषय करने वाला होवे और स्मृति से भिन्न, अबाधित अर्थ माने जेदा बाद ना हो सके, ते रज्जू में सर्प का बाद हो जांदा ना, ऐसा ना होवे, उन्हों फिर जेड़ा जेड़ा बाद हो गया वो की हो गया, वो भ्रांति ज्ञान हुआ, वो ज्ञान केड़ा हो गया, भ्रांति ज्ञान हो गया ना। ये कह रहा है अबाधित अर्थ को विषय करने वाला होवे वो स्मृति से भिन्न होवे वो परमा ज्ञान है, स्मृति भी ना हो, याद आ रही वो भी ना होवे, और संशय हो रहा वो भी ना होवे, ते केड़ा होवे अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जिहदा बाद ना हो सके वो स्मृति भी ना हो उनू कहांगे परमा ज्ञान। बहुत कठिन काम है ना, स्मृति ज्ञान है सो परमा कही है, जा लक्षण विषय कोई दोष नहीं। स्मृति ज्ञान और षठ परमा के विचार पूर्वक करण का लक्षण, और कोई स्मृति ज्ञान को भी परमा रूप माने हैं, तिनके मत में परमा के लक्षण विषय स्मृति से भिन्न ऐसा नहीं कहना, किंतु अबाधित अर्थ को विषय करने वाला जो ज्ञान है सो परमा कही है। कोई मत वाला स्मृति ज्ञान नु भी परमा ही मानता है, ओदे फिर मत विच कैसा लक्षण होगा, अबाधित अर्थ को विषय करने वाला परमा ज्ञान है, बस इतना ही। भ्रांति ज्ञान जो है सो अबाधित अर्थ को विषय नहीं करे है, किंतु बाधित अर्थ को विषय करे है, जानते परमा का लक्षण भ्रांति से भिन्न जावे है, भ्रांति ज्ञान में नहीं जावे है। जिनको जिनके मत में स्मृति ज्ञान विषय भी परमा व्यवहार है, तिनके मत में स्मृति ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति है, विद्या की वृत्ति नहीं, ठीक है, और साक्षी के आश्रित भी नहीं, किंतु परमाता के आश्रित है, काहे ते अंतःकरण की वृत्ति का आसरा परमाता ही बने है, साक्षी बने नहीं। इस रीति से स्मृति ज्ञान किसी के मत में तो अंतःकरण की वृत्ति है जाते परमा रूप है, किसी के मत में विद्या की वृत्ति है जाते परमा रूप नहीं। और भ्रांति ज्ञान और संशय ज्ञान जे दोनों सर्व के मत में अविद्या की वृत्ति है और साक्षी के आश्रित है, जामे कोई विवाद नहीं। ठीक है, अब और सुनो। और कहना और विचार करके देखिए तो स्मृति ज्ञान भी अविद्या की वृत्ति है। और ब्रिकी में चली जाओ ना तो की लगेगा जेड़ा तनु ज्यादा आ रही है ना, वो भी अविद्या ही है, वो भी ज्ञान ही है। कि विचार करके देखिए तो स्मृति ज्ञान भी अविद्या की वृत्ति है और साक्षी के आश्रय है, परमा रूप नहीं। काहे ते जो वेदांत संप्रदाय के वेत्ता है तीनों ने परमा ज्ञान षठ प्रकार का कहया है, ता षठ प्रकार में स्मृति ज्ञान नहीं है, जानते परमा नहीं। और मधुसूदन स्वामी ने स्मृति ज्ञान साक्षी के आश्रय ही कहया है। एक मधुसूदन स्वामी हुए हैं, उन्होंने गीता ते भी टीका लिखा है, उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना करके ते बहुत आराधना की थी, ते वरदान मंग लिया, क्या मैं गीता ते टीका लिखना, मैनू ऐसी बुद्धि दो, देख लो। फिर उन्होंने गीता ते टीका लिखा, मगर वरदान मंगना भी फिर नहीं आता ना, कदी कदी बुद्धि भरमित हो जाती है। चलो फिर भी तो भगवान ने साक्षात कर ही लिया ना उन्होंने, उन्होंने ना मधुसूदन, एक तो प्रत्यक्ष परमा, दूसरी अनुमति परमा और तीसरी उपमिति परमा है, चौथी शाब्दी परमा, पांचवी अर्थापत्ति परमा है, जे छठ अभाव परमा है, जे छठी अभाव परमा है, जे छठ परमा है, छे परमा हो गया ना, छे प्रमाण सी ते उन्होंने जेडे ज्ञान है वह भी छे हो गए। ठीक है ना, पूर्व कहे जो प्रत्यक्ष आदि छठ प्रमाण में है, प्रमाण है सो इनके कर्म ते करण है। ठीक है, प्रत्यक्ष परमा का जो करण होवे सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए है, असाधारण कारण जो होवे सो करण कहिए है। करण का लक्षण सुन लो, असाधारण कारण करण, मेरे को हंसी इस वास्ते आ रही है, बहुत कठिन है ना, तो पकड़ में कट ही आ रहा लग रहा है ना। चलो सौ चो पांच ते आउणगे दस बीस पच्चीस और क्या, तुसी ये सोचो ना ये जिन्ना ने लिखे उन्हां दी किन्नी बुद्धि होएगी, उन्हां दे लिखे ही आपां नहीं पढ़ पा रहे, समझ च नहीं आ रहे है ना, तो उन्हां दी बुद्धि कितनी होएगी, कैसे महापुरुष होणगे, विलक्षण बुद्धि वाले। ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी दुर्लभ है भाई, आगे आएगा दर्शन के, मैं केड़े ग्रंथ पढ़े आ, हाँ निश्चल दास जी वो आएगा, ये मैं ग्रंथ पढ़े आ, तो मैं इतने इतने ग्रंथ पढ़ के फिर भी हिंदी च ग्रंथ लिखता, तनक ना उपजी लाज, मतलब मैनू फिर भी ये लज्जा नहीं आई कि मैं संस्कृत का विद्वान होके तो हिंदी च ग्रंथ लिख रहा, अंदर क्यों नहीं तेनू लाज आई, अंदर लाज इस वास्ते नहीं आई, मैं तो ये परोपकार वास्ते हिंदी च लिख रहा कि जेडे संस्कृत नहीं पढ़ सकते उन्हां दा भी भला हो सके, इस वास्ते मैनू लज्जा नहीं है। ते कितना भला किया उन्होंने हिंदी च लिख दिता देखो, और दूसरा और भी देखो सुनाउण वाला भी तुहानू कित्थों मिल गया दसो, देख लो घरे बैठे ही सानू कितों कितों जाके पढ़ने पे। नहीं ये तो अलथा ही है, जैसे फोटो स्टेट ऐसी है, असाधारण कारण जो होवे सो करण कही है, जो सदा सर्व कार्य का कारण होवे सो साधारण करण कही है। चलो जैसे धर्म अधर्म आदि सर्व कार्य के करण है, जाते साधारण कारण है, सर्व कार्य का करण ना होवे किंतु किसी कार्य का करण होवे सो असाधारण कहिए है। जैसे नेत्र है, नेत्र है दे की कहांगे, ये साधारण करण है। असाधारण क्यों कहांगे? साधारण करण केड़ा मन है, मन जेड़ी इंद्री दे नाल होगा ओही इंद्री काम करेगी। जे मन इस इंद्री दे नाल है ना, अख दे नाल, तां ही देखिया जाएगा। ते जे मन इहदे नाल है तां ही सुनेगा। ते जे आपां देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कदी कदी ऐसे भी होगा आपां इसे कथा सुन रहे हैं ते मन सदा चल गया घर, तो फिर जो तुसी जो सुन रहे हो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मन जो है ये इंद्री दे नाल नहीं है। इसलिए मन क्या हो गया? मन तो सारिया इंद्रिया दे प्रति हो गया साधारण करण, और एक एक इंद्री होगी असाधारण, क्योंकि अख तो बगैर रूप का ज्ञान हो जाएगा वो साधारण हो गया, क्योंकि अख तो बगैर रूप का ज्ञान हो जाएगा नहीं हो सकता। काला चिट्टा नीला जितना रूप है इहदा ज्ञान करने वाली कौन है? अख। तो ये जो इंद्री है श्रवण इंद्री, शब्द का ज्ञान इस तो बगैर हो सकता? अखां शब्द सुन लैणगियां, शब्द यही सुनेगी। तो है कितना बिल्कुल त्यार दर त्यार इंद्रियां बैठियां, कोई सामने निकल जाए फट ज्ञान हो जाएगा। वो गया फलाना इधर नू गया, कोई शब्द चलता होवे किते चलता होवे कान दे नाल संबंध हो गया तो फट ज्ञान हो जाएगा। ये इन्हें तैयार बैठिया तो आप किन्ने ढिले बैठे हैं। कोई सुगंधी दुर्गंधी फट आवे तो कमरे के अंदर वड़दे ही दस देंगे ये दुर्गंधी या सुगंधी आ रही है। कितनिया तैयार है? कोई किसी की अडीक कर दियाँ भी मैनू मेरा मैं काम करा कि ना करा, अपने आप करी जा रही हैं। कोई आदेश देवे प्राण श्वास अंदर आ रहे जा रहे, कोई कह रहा भी अंदर चले जा बाहर आ जा अंदर चले जा बाहर आ जा, कैसे चल रहे हैं? तो असी सारे निजम भंग कर रहे हैं, सारे निजम तोड़ करके अपनी मर्जी करी फिर रहे हैं। किहदे पिछे लग के? मन दे पिछे लग के। साढ़े ना तो यही चंगी हो गई जड़ पदार्थ बई, ये तो यही ड्यूटी लगाती, तू रूप ही देखना है सुनना कुछ नहीं। तो देखो ये सुन दी है कोई? ये रूप ही देखी जा रही है, एदी ड्यूटी लगा दिती है, तू सुनना ही है देखना नहीं, तो वह सुनी जा रही है। उन्हें सुनना ही है, भले सुत्या पे भी कोई आवाज मार दे तभी कहू हां भाई देख लो। तो आप कितने आलसी हो गए, इधर ना भी गए गुजरे। जैसे दंड जो है सो सर्व कार्य का करण नहीं, किंतु घट आदि के जो कार्य विशेष है तिनका कारण है। जानते दंड असाधारण कारण कहिए है, और घट का कारण भी कहिए है। तैसे प्रत्यक्ष परमा के ईश्वर और तांकी इच्छा से आदि लेके जो साधारण कारण है, साधारण कारण है काहे ते ईश्वर से आदि लेके सर्व कार्य के कारण है, तिन बिना कोई कार्य होवे नहीं। जानते ईश्वर आदि के साधारण कारण है, और नेत्र से आदि लेके जो इंद्रियां हैं सो प्रत्यक्ष ज्ञान के असाधारण कारण है। जानते नेत्र आदि की जो इंद्रियां हैं सो प्रत्यक्ष परमा के कारण है। इस रीति से नेत्र आदि की जो इंद्रियां हैं सो प्रत्यक्ष प्रमाण कहिए है। मैंने अपनी अखा से देखा, उन्होंने कहिए ना कोई कहे तुहानू आके कोई गल दसे मैं अज आ काम हो गया, तो तुसी क्यों कहोगे? तैनू कितना पता? यही कहोगे? वो की पुरुष की कहेगा मैं अपनी अखा ना देख के आया। अखा की हो गई फिर? प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण नु केड़े चीज चाहिए? अखा। मैंने अपने कन्ना ना सुनिया, ते कन की हो गए? सुन दे शब्द दे प्रति प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है ना? ऐसे ही कह रहा परमात्मा प्रमाण परमिति और परमेय चेतन। देखो तीन चार चेतना बारे बताएंगे। इंद्रियों को यद्यपि इंद्रियों को वेदांत सिद्धांत विषय परमा ज्ञान की कारणता कहना बने नहीं, कहे थे चेतन के चार भेद हैं। एक तो परमाता चेतन है, और दूसरा परमाण चेतन है, और तीसरा परमिति चेतन है। ताही को परमा चेतन भी कहे हैं और चौथा परमेय चेतन है ताकू विशे चेतन भी कहे हैं। परमेय मने पदार्थ जड़ा हो। इस रीति से परमा नाम चेतन का है सो नित्य है इंद्रिय जन नहीं जानते इंद्रियां ताका करण नहीं कारण नहीं तथापि चेतन में परमा व्यवहार का संपादक वृत्ति भी परमा कही है ताके इंद्रियां करण है। वो कह रहा है सारा काम चेतन कर रहा है कहण दा तात्पर्य की है सारा काम चेतन कर रहा है ते आपा इंद्रियां विच ला के बैठ जाने हैं ठीक है ना। इस रीति से परमा नाम चेतन का है सो नित्य है इंद्रिया जन नहीं जाते इंद्रियां ताका कारण नहीं तथापि चेतन में परमा व्यवहार का संपादक वृत्ति भी परमा कही है ताके इंद्रियां करण है। देह के मध्य जो अंतःकरण तां करके अवशिन्न जो चेतन सो परमाता चेतन परमा चेतन परमाता चेतन कही है। परमाता किनू कहांगे कौन हो गया प्रमाण प्रमाण इंद्रियां और परमेय जो आगे वस्तु है ठीक है ना। देखो देह के मध्य में जो अंतःकरण तां करके अवशिन्न जो चेतन सो परमाता चेतन कही है कौन साक्षी देह के माध्यम ही तो है और कहते हैं शरीर दे विच ही तो है शरीर दे विच तो है अंतःकरण है ना। शरीर दे विच जितना आकाश है ओदे विच जेड़ा आया चेतन उनू कहांगे कि साक्षी तो ही परमा चेतन है। देह दे माध्यम ही तो है और देह तो बाहर थोड़ी है कोई है ना। सोई अंतःकरण नेत्र आदि के इंद्रियां द्वारा निक्ष के देखो सोई अंतःकरण इंद्रियां द्वारा निक्ष के जितने दूर घाट आदि विषय स्थित होवे उतना लंबा परिणाम अंतःकरण का होवे है और आगे विषय जो घाट आदि के है तिनसे मिलके जैसा घाट आदि का आकार होवे तैसा ही अंतःकरण का आकार होवे है। देख लो की कह रहा हो वो कह रहे अंतःकरण की वृत्ति निकली जैसा पदार्थ सामने पिया है उतना लंबा जितनी दूर है उतना ही लंबा अंतःकरण का प्रणाम हो जाएगा और जैसा पदार्थ है ऐसा ही उदा आकार भी हो जाएगा। अब दृष्टांत दे रहा जैसे कोठे में भरिया जो जल सो शिदर द्वारा निक्स के लंबे नाले का आकार हो के बगीचे के किदार में जावे है और किदार में जाए के जैसा किदार का आकार हुए तिस आकार को जल प्राप्त हुए है। कोठे में मैंने टैंकी में भरिया जल टैंकी जी जल भरिया है ओदे विचों आपा छड़ दिता जल ते खेत दूर है ते विच की बना ली नाली जी बना के ते खेत च पानी लै गए उथों लै के वह है अंतःकरण वो नाली तक जेड़ा गया खेत का उन्हों कहांगे प्रणाम प्रमाण अंतःकरण का सारा प्रमाण है और जितन जैसे जैसा खेत होगा ना ऐसा ऐसा ही जल हो जाएगा। जे खेत चार नुकरा बड़ा है तो जल भी चार नुकरा बड़ा हो जाएगा जे खेत तीन नुकरा बड़ा है जल भी तीन ऐसे ही अंतःकरण है। जैसा पदार्थ होगा गोल है तो गोल हो जाएगा लंबा है तो लंबा हो जाएगा ठीक है ना। तैसे अंतःकरण भी इंद्रियां रूप शिदर द्वारा निक्ष के विषय रूप केदार को जावे है तहां शरीर से लेकर के घट आदि विषय पर्यंत जो अंतःकरण का नाले के समान परिणाम ताकु वृत्ति ज्ञान कहे हैं वो तो होगी वृत्ति ठीक है। ताके ता करके अवशिन्न जो चेतन ताकु प्रमाण चेतन कहे हैं ठीक वो प्रमाण चेतन हो गया। वृत्ति चेतन भी कह सकते हैं प्रमाण चेतन भी वृत्ति ज्ञान रूप जो अंतःकरण का परिणाम तामकु परमा कहे हैं की हो गया फिर वृत्ति ज्ञान रूप जो अंतःकरण का परिणाम तामकु परमा जो सामने पदार्थ पिया ओदा जो ज्ञान हो गया तो उन्हों की कहांगे परमा ज्ञान। जह वेद अर्थ के जानने वाले जो आचार्य है तिनका तिनकी परिभाषा है वो कह रहा मैं नहीं कह रहा है, ये वेद के अर्थ जो जानने वाले उन्होंने कहने का तात्पर्य।